सोने का कर रहे बहाना, जाग रहे हो मैंने जाना, करवट बदल रहे जन्मों से, जागो जग है, जागो जग है, मुसाफिर खाना, जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो, सोते सोते उम्र गुजारी, सोते सोते उम्र गुजारी, अब तो नींद से जागो,
जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो।
सब में एक ही नूर समाया, एक वही भरपूर समाया, सब में एक ही नूर समाया, एक वही भरपूर समाया, ध्यान का खजाना, ध्यान का अनमोल खजाना, हर कोई संग ले कर आया, मैं नहीं आया हूँ सिखाने, मैं नहीं आया हूँ सिखाने, होश भरा जीवन अपना लो, ध्यान को कल पर मत टालो, होश भरा जीवन अपना लो, पग पग पर होती है परीक्षा, पग पग पर होती है परीक्षा, जागने को धर्म बना लो, मैं तुम्हें आया हूँ बताने, मैं तुम्हें आया हूँ बताने, मैं तुम्हें आया हूँ जगाने,
जागो अब तो नींद से जागो, जागो
चार दिनों की है जिंदगानी, मन करता फिर भी मन मानी। चार दिनों की है जिंदगानी, मन करता फिर भी मन मानी। आँख है फिर भी है अंधा, आँख है फिर भी है अंधा, हर मनुज की यही कहानी। मैं तुम्हें आया समझाने, मैं तुम्हें आया समझाने, मैं तुम्हें आया हूँ जगाने।
जागो अब तो नींद से, जागो जागो अब तो नींद से जागो।
सोते सोते उम्र गुजारी, सोते सोते उम्र गुजारी, अब तो नींद से जागो।
जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो। जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो।
नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत आपका ओशो के ध्यान चिकित्सा समूह जगत में। पिछले एपिसोड की प्रवचन सीरीज सहज योग भाग 17 को ही आगे बढ़ाते हुए आज उसके प्रश्न नंबर 2 का जवाब ओशो से सुनेंगे। ये ध्यान चिकित्सा समूह उन्हीं लोगों के लिए हैं जो लोग गहरे जाना चाहते हैं।
दूसरा प्रश्न भी पहले से संबंधित है। भगवान भारतीयों को ग्रुप थेरेपी, सामूहिक मनोचिकित्सा में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता? क्या पश्चिम को ही सामूहिक चिकित्सा की आवश्यकता है और पूर्व को नहीं? परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं दिखती। वास्तविकता तो यह है कि 90% भारतीय ही यौन विक्षिप्त पाए जाते। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करने की अनुकंपा करें कि भारतीयों को इस विशिष्ट पद्धति से वंचित रखना कहां तक उचित है और क्यों? पूछा है डॉक्टर तपन कुमार चौधरी ने। डॉक्टर हैं तो निश्चित वे जानते हैं कि भारतीयों की असली मानसिक दशा क्या है। ठीक है, 90% ही नहीं, 99% भारतीय काम दमन से पीड़ित है। और मैं जानता हूं उन्हें जितनी आवश्यकता है उतनी शायद किसी और को नहीं, लेकिन अड़चने हैं बहुत। पहली तो बात भूमिका का अभाव है। भारत सदियों से दमन की धारा में जिया है, तो किसी भारतीय को अगर मैं कहता भी हूं कि तुम जाओ और सामूहिक चिकित्सा में सम्मिलित हो जाओ तो वो सम्मिलित नहीं होता। भाग खड़ा होता है, यहां आते ही नहीं। फिर यहां से भगाना हो किसी को तो मैं उसे सामूहिक चिकित्सा का सुझाव दे देता हूं, उससे मेरी भी झंझट छूट जाती और उसको भी आने का उपाय दोबारा नहीं रह जाता। भूमिका का अभाव है। सामूहिक चिकित्सा के पीछे एक मानसिक भूमिका चाहिए। न तो उन्हें पता है कि एनकाउंटर क्या है, न उन्हें पता है कि प्राइमल थेरेपी क्या है, न उन्हें पता है कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है। ये सारा विज्ञान पश्चिम में पैदा हुआ है। मैं तुमसे कह देता हूं कि अगर तुम जल्दी नहीं जागे तो पश्चिम तुम्हें आध्यात्मिक अर्थों में भी पीछे छोड़ देगा। भौतिक अर्थों में तो तुम्हें पीछे छोड़ ही दिया है पश्चिम ने, क्योंकि तुम नहीं जागे। जाग सकते थे, भारत में पहली दफा गणित पैदा हुआ था, लेकिन फिर भारत आइंस्टीन को क्यों पैदा नहीं कर सका? सुस्ती है, काहिलता है, भाग्य पर छोड़े बैठे हैं सब। तो गणित भारत में पैदा हुआ, लेकिन आइंस्टीन, उसकी पूर्णाहुति भारत में ना हुई, पूर्णाहुति पश्चिम में हुई। भारत ने करीब करीब सभी विज्ञानों की प्राथमिक खोज कर ली थी, लेकिन उसका अंतिम उसकर्ष भारत में नहीं हुआ, पश्चिम में हुआ। हमने सर्जरी का प्राथमिक प्रयोग किया था, लेकिन फिर सर्जरी ने अपनी पराकाष्ठा पश्चिम में पाई। औषधि हो कि गणित हो कि सर्जरी हो कि रसायन विज्ञान हो कि भौतिकी हो, हर दिशा में भारत ने सबसे पहले प्राथमिक प्रयोग किए थे, मगर प्राथमिक पर ही हम रुक जाते। आत्यंतिक जाने के हम न साहस जुटा पाते, न शक्ति जुटा पाते, न उतना मनोबल जुटा पाते। अब वही दुर्भाग्य फिर घटने को है। तंत्र पर हमने सबसे पहले प्रयोग किए थे और हमने तंत्र पर बड़ी गहराइयां पाई थी, मगर पश्चिम हमसे आगे निकला जाता है। और अगर थोड़ी देर और की तो जैसे अभी तुम्हारे बच्चों को पश्चिम जाना पड़ता है गणित और विज्ञान सीखने, कुछ आश्चर्य न होगा कि किसी दिन धर्म और ध्यान सीखने भी पश्चिम जाना पड़े। तो तुम उसमें भी पिछड़ते जा रहे हो जिसमें तुम सदा अग्रणी थे, अब तुम उसमें भी अग्रणी ज्यादा देर न रहोगे। तुम्हारी आदत ही पिछड़ने की हो गई। तुम किसी भी चीज में अपनी सारी सामर्थ्य लगा के नहीं जुटते हो। अब तुमने पूछा है कि भारतीय चिकित्सा, भारतीय जनों को सामूहिक चिकित्सा से वंचित क्यों रखा जा रहा है। पहली तो बात यह कि कोई भारतीय यहां 3-4 महीने आके रुकने को राजी नहीं होता। 3-4 महीने न रुके तो सामूहिक चिकित्सा के प्रयोग नहीं किए जा सकते। भारतीय तो आता है 2 दिन के लिए दर्शन करने के लिए, वो कहता दर्शन हो गए सब हो गए। तुम्हें यह आदत पकड़ गई सदियों से कि गए और किसी सदगुरु के दर्शन कर लिए और सब हो गए, बात खत्म हो गई, चरण छू आए, आशीर्वाद ले लिया, कुछ और करना नहीं है। पश्चिम से जो लोग आते हैं 3 से 6 महीने का समय लेके आते, तुम यहां आते हो 1-2 दिन के लिए, बहुत किसी ने हिम्मत की तो वो 10 दिन के लिए शिविर के लिए आ जाता है। शिविर में भी तुम ध्यान कम करते हो, देखते ज्यादा हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तुम्हारा रस कुछ विक्षिप्त हो गया है। दांव पर तुम कुछ भी लगाना नहीं चाहते। कुछ भारतीयों को मैंने चिकित्साओं में भेजा। मैं चाहता हूं कि चिकित्सा का जो लाभ हो सकता है वो भारतीयों को भी मिले, मिलना ही चाहिए। और तपन कुमार तुम ठीक कहते हो कि 99% लोग यहां रुग्ण हैं, इनको आप चिकित्सा का अवसर न देंगे। देना चाहता हूं। पहली तो बात, किसी को चिकित्सा के लिए कहो तो वो राजी नहीं होता। अब जबरदस्ती तो किसी के ऊपर चिकित्सा नहीं थोपी जा सकती। आदमी भाग रहा हो और तुम उसे लिटाओ और ऑपरेशन करो, ये तो नहीं हो सकता। कम से कम उसकी स्वीकृति तो चाहिए ही। स्वेच्छा से ही चिकित्सा हो सकती है। सकती फिर किन्हीं को मैंने समझा बुझा के भेज भी दिया तो वो चिकित्सा में पहुंच भी जाते, सम्मिलित नहीं होते, बैठे रहते हैं एक कोने में, भागीदार नहीं बनते, वहां भी दर्शक बने रहते। तो उनके कारण जो और लोग चिकित्सा में सम्मिलित हैं उनको बाधा पड़ती। तो मुझे पाश्चात्य सन्यासी आके कहते हैं कि आप भारतीयों को मत भेजिए, क्योंकि वो सम्मिलित तो होते नहीं और एक पत्थर की तरह वहां खड़े हो जाते, किसी चीज में भाग लेते नहीं। तो जो धारा बहनी चाहिए समूह की, उसमें एक चट्टान पड़ जाती, धारा में बाधा आ जाती। एक तो भूमिका का अभाव है, क्योंकि तुम दमन की हवा में पले हो। तुम्हारी छाती पर मुरारजी देसाई जैसे लोग इतनी सदियों से बैठे कि जब तक तुम उन्हें ना उतार दो तुम्हारे रोग ना उतरेंगे, तुम्हारी बीमारियां ना उतरेंगी। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी धारणाएं चित्त में घर कर गई कि उनके साथ अड़चन है। अब तुमने पूछा है तपन कुमार, लेकिन अगर किसी भारतीय को मैं कहता हूं कि तुम जाके लीला थेरेपी में या एनकाउंटर में सम्मिलित हो जाओ, तो वो कहता है पहले मैं अपनी पत्नी को पूछूंगा। पत्नी राजी नहीं, क्योंकि वहां और स्त्रियां, पता नहीं तुम क्या करोगे। एक मित्र को मैंने मालिश करवाने के लिए भेजा, क्योंकि उनके शरीर में तकलीफ है, उनकी पत्नी वहां खड़ी रहती जाके। मालिश भी नहीं करवाने देगी उनको, देखती है खड़ी होके कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। पत्नी को अगर भेजूं चिकित्सा में तो पति राजी नहीं है, तो कैसे भेजूं, क्या उपाय किया जाए। फिर जो भारतीय आते हैं वो कभी अपनी वास्तविक बीमारियां तो बताते नहीं, मुझे दिखाई पड़ती, मगर वो तो बात ना दूसरी करते। भारतीय आके पूछता समाधि कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले। उसको मैं कहूं कि तुम जाओ और तुम एक चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित हो जाओ, वो कहेगा चिकित्सा से क्या लेना देना, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष तो नहीं मिलता चिकित्सा पद्धति से, यद्यपि चिकित्सा पद्धति से कूड़ा कचरा तुम्हारे चित्त का साफ होगा, जो कि मोक्ष के मिलने में सहयोगी है, मगर सीधा मोक्ष नहीं मिलता। तुम बातें ही हवाई पूछते हो आके, फिर तुम जो पूछते हो वही तुम्हें उत्तर देने पड़ते हैं। तुमने जो पूछा नहीं है उसका उत्तर देना ठीक भी नहीं, तुम उसे झेल भी ना सकोगे, तुम उसे लेने को राजी भी ना होगे। इसलिए मेरी मजबूरी समझो, मैं चाहता हूं कि भारत वंचित ना रहे, लेकिन भारत तय किए बैठा है कि वंचित रहेगा। तुम देखते हो पुणे में हर तरह की चेष्टा चल रही कि आश्रम पुणे में ना बचे, इस आश्रम को पुणे से हटना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि पुणे से हटना चाहिए, ये भारत में कहीं और भी नहीं जाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि भारत के बाहर चला जाए। अभी कल मैंने अखबारों में पढ़ा कि मुसलमानों ने एक सभा करके सरकार से निवेदन किया कि मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, तो अब तो मुझे सिवाय मोक्ष जाने की कोई जगह बची नहीं। मैं बड़ी प्रसन्न हुआ, मैंने कहा यही तो मैं पूना रह नहीं सकता, कच्छ जा नहीं सकता, सांसवड़ में आश्रम बन नहीं सकता, पासपोर्ट है वो भी जब्त कर लेना चाहिए, तब तो फिर मेरे लिए सिर्फ निर्वाण ही रह जाता। और तुम कह रहे हो भारतीयों को मैं चिकित्सा पद्धति में क्यों नहीं सम्मिलित करवाता, किनको करवाऊं, मोहनदारिया को, मोरारजी देसाई को, किसको? वे तो इस आश्रम को ही जीवित नहीं रहने देना चाहते, ये आश्रम बचना ही नहीं चाहिए। मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस आश्रम को नेस्त नाबूद कर दूं। और ऐसा नहीं है कि वो नेस्त नाबूद करने में कोई कमी छोड़ रहे हैं, वो सब तरह से कोशिश कर रहे हैं। और बस उनका क्यों नहीं चलता, सारी सत्ता उनके हाथ में, बस की क्या अड़चन है, बस थोड़ा सा एक संकोच उनको लगता है कि अब मैं कोई राष्ट्र के भीतर सीमित नहीं हूं, अब मेरी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय है, वही उनको संकोच का कारण, नहीं तो बस चलने में क्या दिक्कत है, बुलडोजर लाके इस आश्रम को गिरवा दे। लेकिन अब उनको पता है कि मैं भारत में सीमित नहीं हूं, दुनिया के कोने कोने में मेरे सन्यासी, सारी दुनिया में तूफान मचेगा, अगर मेरे साथ कुछ भी जाति की गई तो इसका परिणाम सारी दुनिया में प्रतिफलित होगा, छहों महाद्वीप पर मेरे सन्यासी, इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, यह बात आसान नहीं होगी। अगर इस आश्रम को कोई भी चोट पहुंची तो मोरारजी देसाई किसी देश में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, जहां जाएंगे वहां मुसीबत होगी, तो इस देश के राज दूतावास किसी देश में बचे नहीं रह सकेंगे, इससे घबराहट है, इससे परेशानी कि उपद्रव खड़ा हो जाएगा कि फिर हम अपनी लोकतांत्रिक प्रतिमा को कैसे बचाएंगे। क्योंकि ये तो गैर लोकतांत्रिक कदम होगा। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। कमरे के भीतर नग्न होने का प्रत्येक को अधिकार है, नहीं तो सभी पति पत्नियों को जेल में डालना पड़ेगा। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, मैं इस हिसाब से होशियारी से चल रहा हूं। मेरे ऊपर कोई कानूनी जुर्म नहीं है, न मेरे आश्रम पर कोई कानूनी जुर्म है। सारी फिक्र इस ढंग से की है कि कानूनी ढंग से तो कोई तरह से वो पकड़ ही नहीं सकते, नहीं तो तुम सोचते हो वो छोड़ते। अगर वो संजय गांधी पर 22 मुकदमे चला सकते तो मुझ पर 220 चलाते। मगर सब 420 मिलके भी मुझ पर 220 मुकदमे नहीं चला सकते। मुकदमे का कोई कारण नहीं, इसलिए एक नपुंसकता अनुभव हो रही कि क्या करें, बस नहीं चलता है, नहीं तो मिटा देते। मगर जितना बस चलता है उतनी चेष्टा जारी रखते। तुम कहते हो मैं भारतीयों को इन चिकित्सा पद्धति में क्यों सम्मिलित नहीं करता, किसको सम्मिलित करूं? फिर सम्मिलित होने इस तरह के लोग जरूर आते जिनका प्रयोजन दूसरा है, जो चाहते हैं कि चित्र ले लें वहां जाके और चित्रों को अखबारों में छपवा दें। जिसको सम्मिलित होना है उसे ध्यान करना होगा, शिविर करने होंगे, और जो चिकित्सा पद्धति मैं दूंगा उनमें सम्मिलित होना होगा। उतना धीरज नहीं, उतने प्रयोगों से गुजरने की क्षमता नहीं। एक तो भूमिका का अभाव है। पश्चिम में पिछले 50 वर्षों में मनोविज्ञान ने बड़ी ऊंचाइयां ली, बड़े शिखर छुए, उसका कोई बोध नहीं। और गैर पढ़े लिखे आदमी की बात छोड़ दो, विश्वविद्यालय में तुम्हारे जो शिक्षक मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं वो भी 30-40 साल पुरानी किताबों के आधार से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो पढ़ा था विश्वविद्यालय में वही पढ़ा रहे हैं। उनके लिए अब भी मैकडूगल की किताबें वेद है। उन्हें कोई पता नहीं अब्राहम मैस्लो का, उन्हें कोई पता नहीं फ्रिट्ज पल्स का, उन्हें कोई पता नहीं जेनेओ का, उन्हें कोई पता नहीं कि नई नई क्या खोजें हो रही, उन्हें विलियम राइक का कोई पता नहीं। मगर फिर ये भारत की ही बात नहीं, विलियम राइक तो अमेरिका में था लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसे जेल में डाल दिया क्योंकि उसने काम ऊर्जा के रूपांतरण के कुछ प्रयोग किए। काम ऊर्जा के रूपांतरण के प्रयोग और विलियम राइक दिक्कत में पड़ा और फिर उन्होंने आखिरी क्या तरकीब की तुम्हें पता है, कोई उसके खिलाफ कानूनी उपाय नहीं मिल सका तो झूठा जबरदस्ती उसे पागल करार दे दिया और पागल करार दे के जेल खाने में रख दिया। विलियम राइक जेल खाने में मरा। इस सदी का सबसे बड़ा तांत्रिक शोधक पागल की तरह जेल खाने में मरा, जबरदस्ती मारा गया। अब अमेरिका में अगर ऐसा होता हो तो भारत का तो तुम सोचो कि क्या हालत होगी। इसलिए भूमिका का अभाव बड़ी अड़चन है, शिक्षा का अभाव बड़ी अड़चन है। तुम मुझसे कहते हो सामूहिक चिकित्सा में भारतीयों को प्रवेश दूं, मैं देना भी चाहता हूं, लेकिन यह ऐसा ही होगा कि जिसे साधारण गणित नहीं आता वो अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षवाद के सिद्धांत को समझने के लिए कोशिश करे, नहीं समझ पाएगा। उसकी भूमिका तय करनी होगी। धीरे धीरे सने सने उसकी भूमिका तैयार कर रहा हूं। ये मेरे सन्यास का व्यापक प्रसार उसी दिशा में आयोजन है। धीरे धीरे तुम मुझसे राजी होने लगो, मेरी बात तुम्हें समझ में आने लगे, धीरे धीरे तुम इतनी श्रद्धा से भर सको कि अपनी धारणाओं के विपरीत भी प्रयोग करना हो तो कर सको, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें प्रयोग करवाऊं। और तुम्हें प्रयोग करवाने के लिए ही नए कम्यून को बनाने का आयोजन कर रहा हूं। क्योंकि पाश्चात्य व्यवस्था से सामूहिक चिकित्सा तुम्हारी ना हो सकेगी। तुम्हारे लिए मुझे नए ढंग ही खोजने होंगे जो तुम्हारी भारतीय शैली और व्यवस्था के अनुकूल। पाश्चात्य चिकित्सा महंगी है, यद्यपि मैंने उसे इतना सस्ता किया जितना किया जा सकता है। जिस चिकित्सा के लिए पश्चिम में 5,000 रुपए खर्च होते हैं, उस चिकित्सा के लिए यहां 500 रुपए में व्यवस्था की, लेकिन भारतीय के लिए तो 500 रुपए भी बहुत है। उसके लिए तो 50 रुपए में व्यवस्था हो सकती तो ही काम हो सकेगा। तो नए कम्यून में जहां ज्यादा जगह होगी, ज्यादा विस्तार होगा, ज्यादा सुविधा से प्रयोग हो सकेंगे। अब यहां तो हर चीज की अड़चन है, यहां तो साउंड प्रूफ कमरा चाहिए, एयर कंडीशन कमरा चाहिए, क्योंकि साउंड प्रूफ ना हो तो चिकित्सा में जो आवाजें निकलेंगी पड़ोसी परेशान करते हैं, वो पुलिस को फौरन खबर कर देते हैं। एयर कंडीशन होना चाहिए तो ही साउंड प्रूफ हो सकता है, नहीं तो लोग मर जाएंगे भीतर बंद कमरे में। तो महंगा हो गया, एयर कंडीशन्ड होगा, साउंड प्रूफ होगा, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, खास तरह की ईंटों से बना होगा, तो सारी चीज महंगी हो गई। भारतीयों के पास सुविधा नहीं है कि वह अभी 500 रुपए भी चिकित्सा के लिए खर्च कर सके। फिर चिकित्सा के समय में खास तरह का भोजन दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक चिकित्सा तुम्हारी ऊर्जा पर काम करती है। किस ऊर्जा के लिए कैसा भोजन जरूरी, वही भोजन दिया जाता है, वो भी महंगा हो जाता है। अब कौन भारतीय 15 दिन के लिए 500 रुपए चिकित्सा का देने के तैयार, लाए भी कहां से, इतनी तो उसकी मासिक तनख्वाह भी नहीं है। वो महीने भर अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, पत्नी को क्या खिलाएगा। चाहता हूं, बहुत हृदय से चाहता हूं, भीतर भीतर चिंतित होता हूं कि क्यों तुम्हारे लिए भी सारा साधन ना उपलब्ध हो जाए, मगर फिर उसके लिए बहुत विस्तृत जगह चाहिए जहां कोई पड़ोसी ना हो। तो न एयर कंडीशन की जरूरत होगी, न साउंड प्रूफ की जरूरत होगी। फिर भाषा का प्रश्न है। अभी तो हमारे पास जितने चिकित्सक हैं वो सब पश्चिम से आए हैं, क्योंकि मैंने पश्चिम के श्रेष्ठतम चिकित्सकों को यहां इकट्ठा किया है। तुम जान के चकित हो गए, इस समय पृथ्वी पर चिकित्सा का इतना श्रेष्ठ कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि जितने पश्चिम के श्रेष्ठ चिकित्सक थे सब मेरे सन्यासी हो गए। वो समझ सके, मुझे तत्काल समझ सके। पश्चिम के कई चिकित्सा केंद्र बंद हो गए क्योंकि उनके संस्थापक तो पुणे आ गए। इंग्लैंड के 2 चिकित्सा केंद्र बंद हो गए जो बड़े चिकित्सा केंद्र थे, यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा केंद्र थे। एक को तीर्थ चलाता था, एक को सुमेंद्र चलाता था, वो दोनों यहां आ गए। सारी दुनिया से श्रेष्ठ चिकित्सक यहां है, लेकिन भाषा का सवाल है। तो अब मैं फिक्र कर रहा हूं इसकी कि भारतीय भाषाओं में चिकित्सक तैयार हो सके तो फिर भारतीय चिकित्सा में उतर सकेंगे, नहीं तो भाषा अड़चन बन जाती। जिस भाषा को तुम बिना किसी अड़चन के नहीं बोल सकते, उस भाषा में बहुत गहरा संवाद नहीं हो सकता। और ये सारी चिकित्साएं संवाद पर आधारित हैं, क्योंकि तुम्हारे हृदय को पूरा का पूरा प्रकट करना है। अब समझो कि तुम अंग्रेजी बोल लेते हो, काम चलाओ, लेकिन अगर झगड़ा हो जाए, मारपीट होने लगे, तो फिर अंग्रेजी ना बोल सकोगे, फिर एकदम हिंदी में गाली दोगे, क्योंकि गाली देना अंग्रेजी में किसी स्कूल में सिखाया भी नहीं गया, किसी विश्वविद्यालय में। मगर तभी बात अड़चन की हो जाएगी। कहानी है प्रसिद्ध कि भोज के दरबार में एक विद्वान आया और उसने कहा कि मैं 30 भाषाओं का पारंगत हूं और तुम्हारे दरबार के जो रत्न हैं उनको चुनौती देता हूं कि कोई मेरी मातृभाषा पहचान ले। मातृभाषा पहचान ले तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं भेंट करूंगा, और अगर कोई न पहचान सका तो 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें मुझे भेंट करनी पड़ेंगी। ये चुनौती बड़ी थी। भोज के दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे, कालिदास भी भोज के दरबार में था। बड़े बड़े विद्वानों ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन हर एक हारता गया। वह व्यक्ति इतना अद्भुत था कि हर भाषा ऐसे बोलता था जैसे उसकी मातृभाषा हो। अंततः कालिदास ही बचे। भोज ने कहा कि कुछ करो नहीं तो ये बड़ा अपमान होगा, दुनिया हंसेगी कि हमारे दरबार में एक आदमी नहीं है ऐसा जो इसकी मातृभाषा पहचान सके। भोज की बात सुन के भी कालिदास चुप रहे। उस दिन आखिरी विद्वान हारा। इसके बाद के दिन कालिदास का नंबर आने को था, सब विदा हो रहे थे। वो 10,00,000 असरफियां उस दिन लेके फिर लौट रहा था। जैसे ही सीढ़ियों से महल के उतरते थे, कालिदास ने उसे एक धक्का दे दी। थैली गिर गई, असरफियां बिखर गईं। वो आदमी कोई 50 सीढ़ी राजमहल की नीचे खिसट के जमीन पर गिरा, उठ के एकदम गाली देने लगा। कालिदास ने कहा, यही तुम्हारी मातृभाषा, मुझे क्षमा करो। और कोई उपाय नहीं था जानने का, और वही उसकी मातृभाषा थी। प्रेम करना हो या गाली देनी हो, दूसरे की भाषा में नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर कोई भारतीय किसी पाश्चात्य स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, या पाश्चात्य पुरुष किसी भारतीय स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, ज्यादा देर टिकता नहीं मामला, क्योंकि हार्दिकता प्रकट नहीं हो पाती, संवाद नहीं हो पाता, कुछ कुछ फासला बना रह जाता है। प्रेम हो कि घृणा, ये इतने उत्तप्त भाव हैं कि इनके लिए अपनी ही भाषा चाहिए। यह अड़चन है। अभी हमारे पास कोई भारतीय चिकित्सक पैदा नहीं हो सके। उनके पैदा होने की सुविधा बनाना चाहता हूं, लेकिन मुरारजी देसाई बनने नहीं देना चाहते। कच्छ की तो उन्होंने कसम खा ली है कि कच्छ में तो आने नहीं देंगे, क्योंकि उनके प्रदेश गुजरात को मैं बर्बाद कर दूंगा। गुजरात को तो उन्हें बचाना, और अब वो महाराष्ट्र की भी चिंता में पड़ गए कि महाराष्ट्र को भी बचाना। दोनों तरफ जमीनें लेके पड़ी हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं देते। और मैंने उनको खबर भेजी कि कह दो नहीं तो भी काम हो जाए। वो नहीं भी नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं नहीं कहना गैरकानूनी। नहीं कहेंगे तो मैं अदालत से फैसला ले सकता हूं, तो नहीं भी नहीं कहते ताकि नहीं भी रुकी रहेगी तो मैं अदालत भी नहीं जा सकता। इस तरह का लोकतंत्र इस देश में चल रहा है। इसको जयप्रकाश नारायण कहते हैं दूसरी स्वतंत्रता। विंस्टन चर्चिल ने जब भारत आजाद हुआ तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जो शब्द कहे थे वो करीब करीब भविष्यवाणी की तरह सही सिद्ध हो गए। उसने जो शब्द कहे थे वो ये थे, इटली को उसने कहा था कि महानुभाव आप भारत को स्वतंत्रता तो दे रहे हैं, लेकिन 30 साल के भीतर ये लुच्चे और लफंगों के हाथ में पड़ जाएगा। 30 साल पूरे हो गए और लुच्चे और लफंगों के हाथ में देश पड़ गया। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि विंस्टन चर्चिल को कुछ ज्योतिष शास्त्र आता था क्या? विंस्टन चर्चिल कैसे ये कह सका ठीक 30 साल और देश लुच्चे लफंगों के हाथ में पड़ जाएगा? और वैसा ही हो गया है। तो पहली बात, भूमिका का अभाव है। दमन की लंबी परंपरा है, और ये सारी चिकित्साएं दमन के विपरीत है। ये चिकित्साएं विसर्जन की, कैथार्सिस की, रेचन की। इनमें जो भी दबा पड़ा है बाहर निकाल देना है। अगर क्रोध दबा है तो क्रोध बाहर निकाल देना है। और तुमने जिंदगी भर सीखा है क्रोध को दबा लेना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती, तुम क्रोध निकालोगे कैसे। एक भारतीय युवती को मैंने चिकित्सा के लिए भेजा, उसने कहा कि क्रोध पड़ा है मगर जिंदगी भर की शिक्षा, निकालना भी चाहती हूं तो निकलता नहीं, बस रह जाता, अटका रह जाता है, छाती में अटका रह जाता है। कितनी सदियों से तुम्हें सिखाया गया नियंत्रण, और ये सारी चिकित्साओं में अनियंत्रण सूत्र है। छोड़ दो बिल्कुल अपने को सहज, क्रोध है तो क्रोध, काम है तो काम, जो भी है निकलने दो, बहने दो, ताकि मवाद बह जाए। ये मवाद निकालने के प्रयोग है, ये चिकित्साएं वमन की चिकित्साएं, इसलिए तुम घबराओगे, इसलिए चित्र जो तुम देख रहे हो अखबारों में बहुत घबराने वाले कि ये क्या बीभत्स कृत्य हो रहा है। ये बीभत्स कृत्य नहीं है, ये तुम्हारे भीतर सदियों से पंडित पुरोहितों ने जो दबा रखा है उस मवाद को निकालने का प्रयोग है। और मवाद जब निकलेगी तो दुर्गंध तो थोड़ी फैलेगी, मगर मवाद निकल जाए तो तुम स्वच्छ हो जाओ। तो दमन की लंबी परंपरा बाधा डाल रही है, पर मैं धीरे धीरे प्रयोग कर रहा हूं, कुछ कुछ भारतीयों को भेजता हूं। दो चार भारतीयों ने बड़ी गहराई से प्रयोग किए और बड़े आनंद मग्न बाहर आए, और उनका जीवन एक नई शैली ले लिया। विनोद को मैंने भेजा प्रयोग के लिए और विनोद खरा उतरा, खूब गहरा गया, और उसके बाद से उसके जीवन ने एक नया ढंग ले लिया, एक नई शैली, एक नई मस्ती आ गई। एक दूसरे मित्र को भेजा, वही आग्रह करते थे बहुत दिन से कि मुझे भेजें, काम वासना से परेशान है, तो आग्रह करते थे कि मुझे तंत्र चिकित्सा में भेज दें। मैंने उनसे कहा कि तुम कहते हो कि तुम्हें तंत्र चिकित्सा में भेज दूं, लेकिन तुम उसमें उतर ना पाओगे अभी, तुम्हें पहले उचित होगा कि तुम प्राइमल थेरेपी में जाओ, मगर प्राइमल थेरेपी चलती कोई 10 दिन 12 दिन, उनका उतना तो मेरे पास समय ही नहीं, मुझे तो 3 दिन का तंत्र भर देते। नहीं माने तो मैंने कहा कि ठीक जाओ, जानता था कि व्यर्थ होगा, क्योंकि प्राइमल थेरेपी से गुजरो पहले तो तंत्र में प्रवेश कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे, समझ में ही ना आएगा। वो 3 दिन वहां बैठे रहे, उनकी अकल में कुछ भी ना आया कि क्या हो रहा है। और तंत्र में जो लोग सम्मिलित थे उन्होंने शिकायत की कि इस आदमी को आपने क्यों भेज दिया है, ये सिर्फ वहां बैठा रहता है पालथी मारे, इसकी मौजूदगी हमें अखर रही, न कुछ बोलता है न कुछ चालता है, चौंका सा घबराया सा कि क्या हो रहा है। अब वो फिर आ गए थे कि मुझे फिर तंत्र में जाना है। मैंने कहा कि अब नहीं, अब तुम 2-4 चिकित्साओं में पहले जाओ, आहिस्ता आहिस्ता। अनुभव ये कह रहा है कि मुझे भारतीयों के लिए थोड़ी उदार, थोड़ी कुनकुनी चिकित्साएं विकसित करनी होगी। पश्चिम की चिकित्साएं बहुत उत्तप्त हैं, पश्चिम के लोगों को जरा अड़चन नहीं। पश्चिम ने बड़ी हिम्मत कर ली, तुम जरा सोचो, पश्चिम से युवतियां चली आई हैं बिना फिक्र किए, यहां परदेश में अटकी हैं, तुम्हारे सब तरह की बेहूदगियां झेलती, सन्यासियों को रोज रास्तों पर कोई धक्का देता है, कोई उनके कपड़े खींच लेता है, कोई उनका बैग ही छीन के भाग जाता है, सब तरह का उपद्रव झेल रही, लेकिन फिर भी मौजूद हैं, टिकी। एक बड़ा साहस पश्चिम में पैदा हुआ है, वैसा साहस हमारे लोगों ने खो दिया है। हमने हजारों साल से अभियान नहीं किया है कोई, हम बिल्कुल मुर्दा हो गए, हमने देश को एक मरघट बना दिया है, इस मरघट में मैं फिर से तुम्हें पुकार रहा हूं। कुछ जागने लगे हैं लोग, वही मेरे सन्यासी हैं। कुछ हिम्मतवर स्वीकार करने लगे हैं चुनौती, वही मेरे सन्यासी। जल्दी जैसे ही सुविधा जुड़ जाएगी, भारतीयों के लिए भी चिकित्सा का इंतजाम तपन कुमार हो सकेगा। करना ही चाहता हूं, भारत को बड़ी जरूरत है।
अपना शरीर छोड़ने से पहले अंतिम 18 महीनों में ओशो ने ध्यान चिकित्सा समूहों की एक नई श्रृंखला निर्मित की। अपूर्व रूप से सरल और प्रभावकारी इन चिकित्सा समूहों में भाग लेने वाले साधकों का परस्पर संबंध तो न्यूनतम ही रहता है, लेकिन समूह की ऊर्जा हर साधक को अपनी अपनी प्रक्रिया में गहरे जाने में सहयोग करती है। बॉर्न अगेन मेडिटेशन थेरेपी। ओशो कहते हैं, यह स्मरण रहे, अपना बचपन फिर से प्राप्त करो। बचपन को लौटा लाने की अभीप्सा सभी करते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए करता कोई कुछ भी नहीं। लोग कहे चले आते हैं कि बचपन तो स्वर्ग था, तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पालो फिर से बचपन को, फिर से प्राप्त करने का यह अवसर मैं तुम्हें देता हूँ। ओशो कहते हैं, ज्ञान को एक और रख दो, गंभीरता को परे कर दो और बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाओ। इन 7 दिनों एकदम बच्चों की तरह हो जाओ। आनंदित होना कठिन तो होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तुम ढांचे में ढले हुए हो। तुमने चारों ओर एक कवच ओढ़ा हुआ है, जिसे छोड़ना या उतार कर रखना मुश्किल है। ना तुम नाच सकते हो, ना गा सकते हो, ना कूद सकते हो, ना यूं ही चीख सकते हो, ना हंस सकते हो, ना मुस्कुरा सकते हो। अगर तुम हंसना भी चाहो तो पहले तुम चाहते हो कि कोई चीज हो जिस पर हंस सको। तुम यूं ही नहीं हंस सकते, कोई कारण हो तभी तुम हंस सकते हो, कोई कारण हो तभी तुम रो सकते हो। मैं तुम्हें वापस उस बिंदु पर फेंक देना चाहता हूँ जहाँ से तुमने विकसित होना बंद कर दिया था। तुम्हारे बचपन में एक ऐसा बिंदु आया था जब तुम्हारा विकास रुक गया और तुम नकली होना शुरू हो गए। हो सकता है तुम क्रोधित हुए हो, छोटा सा बच्चा हट कर रहा है, क्रोध कर रहा है, और तुम्हारे पिता या तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा, क्रोध मत करो, यह अच्छा नहीं है। तुम स्वाभाविक थे, लेकिन एक विभाजन निर्मित कर दिया और तुम्हारे सामने है चुनाव आ गया। यदि तुम स्वाभाविक होना चाहते हो तो फिर तुम्हें तुम्हारे माता पिता का प्रेम नहीं मिलेगा। इन 8 दिनों में मैं तुम्हें वापस उस बिंदु पर फेंक देना चाहता हूँ जहाँ तुम स्वाभाविक होने के विपरीत अच्छे होने शुरू हो गए थे। आनंदपूर्ण हो जाओ ताकि अपना बचपन फिर से पा सको। यह कठिन तो होगा क्योंकि तुम्हें अपने मुखौटे, अपने चेहरे सब उतार कर रखने होंगे। तुम्हें अपने व्यक्तित्व को एक किनारे पर छोड़ना होगा, लेकिन याद रखो, मूल तत्व तभी स्वयं को प्रकट कर सकता है जब तुम्हारा व्यक्तित्व वहाँ ना हो, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व एक काराग्रह बन गया है। उसे एक और हटा दो, यह पीड़ादायी होगा, लेकिन यह पीड़ा झेलने जैसी है क्योंकि उससे तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और कोई भी जन्म बिना पीड़ा के नहीं होता। यदि सच में ही तुम पुनर्जीवित होना चाहते हो तो यह जोखिम उठा लो। नो माइंड मेडिटेशन थेरेपी। और मन का अर्थ है निर्विचार चैतन्य, और मन का अर्थ है निर्विचार चैतन्य नहीं वरन जिब्रिश, अनर्गल प्रलाप। और जब मैं तुमसे जिब्रिश करने को कहता हूँ तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मन और उसके सब उपद्रवों को बाहर निकाल फेंको, ताकि पीछे तुम बच्चे हो, विशुद्ध निर्मल पारदर्शी दृष्टा। मेरे प्रिय आत्मन, मैं तुम्हें एक नया ध्यान दे रहा हूँ। इसमें 3 चरण हैं। पहला चरण है जिब्रिश। जिब्रिश शब्द एक सूफी संत जब्बार के नाम से आता है। जब्बार कभी किसी भाषा का उपयोग नहीं करता था, वह सिर्फ अनर्गल और अनशन ही बोलता था। फिर भी उसके हजारों शिष्य थे। वह कहता था कि तुम्हारा मन कुछ और नहीं, बस ऐसा ही है जिब्रिश। इसे हटाकर इस तरफ रख दो तो तुम्हें अपनी आत्मा का स्वाद मिल जाए। पहला चरण जिब्रिश का है और दूसरा चरण साक्षी का। तूफान जा चुका, चक्रवात गया और उसका स्थान नितांत मौन और स्थिरता में बुद्ध ने ले लिया। अब तुम केवल साक्षी हो, शरीर के, मन के और जो भी घट रहा है उस सब के साक्षी मात्र। तीसरे चरण में मैं कहूँगा लेट गो। तब तुम अपनी देह को शिथिल छोड़ देना और बिना किसी प्रयास के जाने देना, तुम्हारा मन उसमें हस्तक्षेप ना करे। मिस्टिक रोज ध्यान क्या है? मिस्टिक रोज का प्रतीक एक इंगित है कि यदि व्यक्ति उस बीज को संभाल कर रखे जिसे लेकर वह पैदा हुआ है, उसे सही भूमि और सही वातावरण दे, उसे सही ऊर्जा दे और उस सही दिशा में चले जहाँ बीज अंकुरित हो सके, तो उसके परम विकास को मिस्टिक रोज के रहस्यदर्शी गुलाब के प्रतीक में अभिव्यक्त किया गया है। जब तुम्हारे प्राण अपनी सारी पंखुड़ियों को खोलकर खिल जाते हैं और अपनी सुवास बिखेर देते हैं, यह ध्यान 21 दिनों तक 3 चरणों में किया जाता है। पहला चरण हंसना। 3 घंटे तक लोग बिना किसी कारण के हंसे, और जब भी हंसी चुकने लगे वे फिर जोर से कहें या हूँ, और हंसी लौट आएगी। 3 घंटे तक गहरे जाने के बाद तुम हैरान होगे कि तुम्हारे प्राणों पर धूल की कितनी परतें जमी हुई हैं। यह हंसी तलवार की तरह उन्हें एक वार में काट डालेगी। 7 दिन तक लगातार 3 घंटे रोज, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे भीतर कितना रूपांतरण होगा। और फिर दूसरा चरण आंसुओं का है। ओशो कहते हैं, अपने अंतस के मंदिर तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी भी कुछ कदम चलने होंगे, क्योंकि तुमने इतनी उदासी, इतनी निराशा, इतनी चिंताओं और इतने आंसुओं को दबाया है। वे सब मौजूद हैं और तुम्हें घेर कर तुम्हारे सौंदर्य, तुम्हारे प्रसाद, तुम्हारे आनंद को नष्ट कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी अंतरतम सत्ता में पहुंचता है तो वह पाएगा कि पहली तह हंसी की है और दूसरी तह पीड़ा की, आंसुओं की है। वो 7 दिन के लिए तुम्हें सम को अकारण ही रोने और चीखने देना है। आंसू निकालने को तैयार ही बैठे हैं, तुम उन्हें रोके हुए हो। बस उन्हें रोको मत, और जब भी तुम्हें लगे कि वे नहीं निकल रहे तो कहो याबू। तीसरा चरण है साक्षित्व, शिखर पर बैठा दृष्टा। अंततः हंसी और आंसुओं के बाद केवल एक साक्षी मौन बचता है। जब तुम रोने के साक्षी होते हो तो वह रुक जाता है, प्रसुप्त हो जाता है। यह ध्यान हंसी और आंसुओं से पहले ही मुक्ति दिलवा देता है, ताकि तुम्हारे साक्षित्व में निरोध के लिए कुछ शेष न रहे। फिर साक्षित्व एक शुद्ध आकाश को खोल देता है। वो 7 दिनों तक बस एक स्पष्टता का अनुभव करो। तो मित्रों, हमने ओशो की थेरेपी के पीछे छिपे तथ्यों को जाना कि उनका मकसद अपने केंद्र तक गहरे जाना है। आप सभी को ओशो का प्रेम भरा आमंत्रण है अपने प्राणों की पंखुड़ियों को खोलकर खेलने के लिए, फिर से छोटे बच्चे हो जाने के लिए, अपनी आत्मा का स्वाद लेने के लिए। आज के एपिसोड में संगीत म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो चिन्मय डंस्टर और मीला रेपा की एल्बम से लिया गया है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड तक के लिए हमारा प्रेम भरा नमस्कार।
The Buddha inside.